नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बक्सर के पास नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बटी ट्रेन, बड़ा हादसा टला। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, स्वघोषित वंशावली भी होगा पूरी तरह मान्य। प्रदेश में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, पटना में सबसे अधिक लोग प्रभावित। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस के डब्बे अलग होने की घटना के तीन घंटे बाद बक्सर दानापुर रेलखंड की डाउन लाइन पर रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस दोपहर करीब 2:30 बजे रघुनाथपुर स्टेशन से गंतव्य के लिए रवाना हुई। बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास सुबह करीब 11 बजे इस गाड़ी की दो बोगियों के बीच कपलिंग फेल होने के बाद 9 डिब्बे इंजन से अलग हो गए। हालांकि इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन के सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से मौजूद हैं और लोग इसे आवेदन देकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश भर में भूमि सर्वेक्षण को लेकर हो रही परेशानियों पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज डिजिटली उपलब्ध कराया है। श्री जायसवाल ने कहा कि जमीन से जुड़े किसी कागजात को लेकर स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग खुद अपनी वंशावली बनाकर स्वघोषणा के साथ जमा कर सकते हैं, ये पूरी तरह मान्य होगा।
एक एक कंफ्यूजन को, अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में, तो उसको दूर किया जा रहा है। और वंशावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले वंशावली बना लें कि वंशावली का एक बार राजस्व कार्यालय जो है हमारा, ये देख लेगा कि वो सही वंशावली बनाकर दिया है कि नहीं। उसके लिए नियम है कि उसको ऑनलाइन देने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि वंशावली में मेरा नाम छूट गया, तभी कोई दिक्कत है। अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं।
डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी को दावा आपत्ति के तीन अवसर प्राप्त होंगे।
किसी भी रैयत को, जमीन के मालिक को, अभी तीन तीन महीना में ये मौका मिलेगा कि वो उसमें सुधार के लिए किसी तरह का कोई शिकायत है तो उसको आपत्ति वो कर सकता है। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा, ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत है। अभी तो आपत्ति का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे।
आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि राज्य के सभी 44 साइबर थाने एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री ढिल्लों ने कहा कि ये एक अत्याधुनिक नेटवर्किंग सिस्टम होगा जिसके माध्यम से सभी साइबर थाने ईओयू के साइबर कोर सेंटर से जुड़ जाएंगे। डीआईजी ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस के लोकेशन को पकड़ना आसान हो जाएगा। साथ ही थाना आपस में साइबर अपराधियों के बारे में सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान कर सकेंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने एक ऐसे धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सतर्क किया है जिसमें जालसाज द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पंजीकरण फीस के रूप में 8,000 रूपये की मांग की जा रही है। इकाई ने कहा कि लोगों को जाली पत्र भेजे जा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत उनका आवेदन पंजीकरण फीस देने के बाद स्वीकृत किया जाएगा। सरकार ने इस तरह के किसी भी दावे को खारिज किया है और कहा कि ये पत्र फर्जी है। इधर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने सलाह दी है कि पीएम कुसुम योजना में रुचि रखने वाले लोगों को पैसे जमा करने या व्यक्तिगत सूचना साझा करने से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का विषय बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर अपने संदेश में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि शिक्षा मनुष्य में सहिष्णुता, सह अस्तित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करती है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि शिक्षा के विस्तार में हम अपना योगदान दें। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस मौके पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर बल दिया। बेगूसराय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने बलिया, साहेबपुर कमाल और डंडारी समेत 9 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ लेखापाल और प्रखंड परियोजना प्रबंधन के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन लोगों पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रखंडों के विद्यालयों में कार्यरत और रिक्त पदों के संबंध में सूचना अपलोड करने के निर्देश की अवहेलना का आरोप है। इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य भर से 62 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक 36 मरीज पटना से हैं। इसके अलावा गया से 7 और औरंगाबाद से 5 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1068 मामले सामने आ चुके हैं। पटना के कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, कुम्हरार और सिपारा में संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने डेंगू के लक्षणों के बारे में जानकारी दी।
जो बुखार है, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है, आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके शरीर पे जो एक रैश बन जाता है, वो भी काफी कॉमनली हम डेंगू के मरीजों में देखते हैं। डेंगू में नॉर्मली बुखार इतनी जल्दी खुद से नीचे नहीं आता, इनफैक्ट जो पैरासिटामोल वगैरह भी हम देते हैं उससे भी बेसलाइन शुरू में वो टच नहीं होता है। लोगों को लगता है कि डेंगू के ट्रीटमेंट में हमें कोई फैंसी दवाई की जरूरत है, नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बुखार के लिए पैरासिटामोल, और ये इंश्योर करना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिए।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर और पटना सहित कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इधर राज्य भर में मॉनसून सक्रियता में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा, औरंगाबाद जिलों में कई स्थानों में 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों में प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
उत्तर मध्य को छोड़कर बाकी स्थानों के एक या दो जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। राज्य के दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य भागों में 24 घंटों के अंदर मेघ गर्जन की भी संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम थोड़ी उमस भरी बनी रहे।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। डॉक्टर मांडविया नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को 2014-15 के लगभग $143 मिलियन से बढ़ाकर लगभग $470 मिलियन कर दिया है। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि ये सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जब विश्व लगातार विकसित हो रहे वैश्विक खेल परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है। पेरिस पैरालंपिक खेलों का समापन आज देर रात हो जाएगा। समापन समारोह फ्रांस के नेशनल स्टेडियम स्टेट डी फ्रांस में होगा। तीरंदाज हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर प्रीतिपाल पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। आज पूजा ओझा महिलाओं की कयाक एकल 200 मीटर KL1 स्प्रिंट कैनोइंग स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। इसके साथ ही भारत का पैरालंपिक खेलों में अभियान भी समाप्त हो गया। कल देर रात नवदीप सिंह के स्वर्ण और सिमरन शर्मा के रजत पदक जीतने के बाद भारत के पदकों की कुल संख्या 29 हो गई है और वे पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा है कि संपूर्णता अभियान के तहत सभी 6 घटकों के मामले में जिले में लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। श्री शास्त्री ने कहा कि शिक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य जैसे मानकों पर काम चल रहा है।
प्लस ये 6 घटक हैं, इसके फायदे काफी। शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, हेल्थ में एनसीडी जो इसको बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि 30 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं उनका बीपी चेक करना है, डायबिटीज चेक करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। प्लस रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो भी इसके लाभुक हैं उनको आपको 100% सैचुरेट करना है।
इस अवसर पर औरंगाबाद में किताब दान अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा व्यक्तित्व विकास पर लिखित पुस्तक का विमोचन वरिष्ठ पत्रकार कमल किशोर ने किया। कटिहार रेल मंडल अंतर्गत जूनियर इंजीनियर डीसी कुमार और ट्रैकमैन विकी राव को मंडल रेल प्रबंधक ने बर्खास्त कर दिया है। दोनों पर पिछले दिनों एक लखी स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर फिश प्लेट खुले होने के मामले में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। कैमूर जिले में सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक ने बाल सुधार गृह के प्रभारी अधीक्षक को निलंबित करने की अनुशंसा की है। प्रभारी अधीक्षक पर बाल सुधार गृह में 2 बालिकाओं को अनाधिकृत रूप से मोबाइल एवं अतिरिक्त सिम कार्ड देने का आरोप है। कटिहार जिले में मनसाही थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के छात्र की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब लदे वाहन के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बक्सर के पास नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, बड़ा हादसा टला। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, स्वघोषित वंशावली भी होगी पूरी तरह मान्य। प्रदेश में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, पटना में सबसे अधिक लोग प्रभावित। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।